खुदावंद के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने यह मुमकिन किया कि हम सब उसके हजूर हाजिर हों। आज हम खुदावंद के कलाम में से, नए अहदनामा में से, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 13वां बाप उसकी पहली 23 आयात में से चंद एक बातें सीखेंगे। और जैसा कि आप में से कोई बहन दुआ कर रही थी कि खुदावंद हमारी रूहानी आंखों को खोल, हमारी कलीसिया में बेदारी भेज, आज हम इस तमसील में, आज हम इस मिसाल में, आज हम इस हिस्सा में खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उस सच्चाई को सीखेंगे जो हमारी जिंदगी में बड़ा गहरा तलक रखती है, खासकर जब हम जिंदगी के मुश्किल हालात में, तूफानों में, परेशानियों में, मुल्की हालात में, घरेलू हालात में घिर जाते हैं, तो खुदावंद ही खुदा, जो खुदावंद यीशु अल मसीह है, हमारी मदद कर सकता है। और आज हम इस कलाम के हिस्सा में से सीखेंगे। और आप सब जानते हैं कि हम इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का जो खत लिखा गया है उसमें से मतालिया कर रहे हैं, उस भेद के बारे में, उस पोशीदा राज के बारे में जो बहुत से जमानों, बहुत से नबियों और बहुत से रसूलों और बहुत से दूसरे लोगों से पोशीदा रहा, जिसे अब खुदावंद खुदा ने अपने कलाम के वसीला से जाहिर किया है। सो आज हम मत्ती की इंजील उसका 13वां बाप उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। जो बहन भाई पढ़ सकते हैं वो जरूर पढ़ें, अपनी अपनी बाइबल निकालें, और खासकर बच्चों से अल्तमास है वो खामोशी से बैठें, गौर से सुनें, क्योंकि मैं आप सबसे सवाल पूछूंगा, आप सबसे बातचीत करूंगा, और मैं चाहता हूं कि गौर से आप सुनें। जब गौर से सुनेंगे तब ही आप सवाल का जवाब देने के काबिल ठहरेंगे, तब ही आप इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि ये वो वक्त है जिसे हम ईमानदारों को सबसे आला दर्जा देना चाहिए, सबसे उम्दा बात जानी चाहिए। जैसे हम बहुत दफा अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को अहमियत देते हैं, इस वक्त को खुदा के हजूर अहम जानने की जरूरत है, अपने दिल को, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को उसकी तरफ लगाने की जरूरत है। उसी तरह जिस तरह पतरस ने जब वो पानी पर चल रहा था तो अपना ध्यान खुदावंद पर लगाए रखा तो वो पानी पर चलता रहा, और जिस लम्हा, जिस वक्त, जिस मिनट उसने अपनी नजर खुदावंद से उठा हटाई, इधर उधर की, इर्द गिर्द देखना शुरू किया तो वो डूबना शुरू हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात को बड़ी इज्जत दें, बड़ा मर्तबा, बड़ा मोहतरम जाने, इज्जतदार जाने कि आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा हर एक को बदला देगा। और जिस बात को हम सीखने जा रहे हैं इसमें बहुत सी चीजें हम सीखेंगे, इसलिए अपने जहन में इस बात को बिठा लें जैसे किसी शायर ने खूब गाकर इस गीत को, इस कहानी को पेश किया है। गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी, आयसु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। अपने दिल को, अपने ध्यान को खुदावंद की तरफ लगाएंगे, इसलिए खामोशी की जरूरत है। सो मत्ती की इंजील उसका 13वां बाप उसकी पहली आयत में पाल खुदावंद का बंदा मत्ती रसूल कहता है, उस रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ गया, कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी हो गई। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि इस दो आयात के पीछे इस बात को देखें कि क्यों यीशु मसीह को कश्ती पर चढ़ना पड़ा, क्यों यीशु मसीह घर से निकला, यहां पर यीशु मसीह क्या बातचीत कर रहा है, पिछले बाप में क्या हुआ है। जब भी आप बाइबल का मतालिया करें, किसी एक आयत को लेकर उससे परेशान ना हो, बल्कि जब भी किसी बाइबल के हिस्सा को, बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम को पढ़ें, उसके पसे मंजर को, यानी के पिछले बाप को, पिछले हिस्से को जानने की जरूरत है। और यहां पर लिखा, उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। पहली आयत। जब हम 12वें बाब को देखते हैं तो यीशु मसीह सब्बत के दिन हैकल में है, और यीशु मसीह ने एक नौजवान को जिसका हाथ सूखा हुआ है उसे शिफा दी है। यीशु मसीह ने पिछले बाप में बहुत ज्यादा मौजजात किए, और क्या हुआ, यीशु मसीह ने गूंगे लोगों को क्या किया, बोलने की कुव्वत दी, बदरूहों को निकाला, यीशु मसीह ने बहुत अजीब काम किए। लेकिन उस वक्त के जो रहनुमा थे, जिन्हें फकी, फरीसी और क्या कहा गया है, हुक्मरान कहा गया है, काहिन कहा गया है, वो यीशु से जलते थे। और उन्होंने क्या किया, यीशु पर ये इल्जाम लगाया कि तू ये सारे मौजजात, ये सारे अजीब काम, गूंगों को, बदरूहों को, लंगड़ों को, सूखे हाथों को, जिनके जिस्म के हिस्से दुरुस्त नहीं, उनको तू शफा देता है खुदा की कुदरत से नहीं बल्कि अबलीस की कुदरत से। तो यीशु मसीह पिछले बाप में हैकल से निकलकर आया और जाकर झील के किनारे पर जा बैठा, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही, बहुत ज्यादा हजूम, हम कह सकते हैं हजारों की तादाद में लोग यीशु मसीह के इर्द गिर्द है। इसलिए यीशु मसीह कश्ती पर चढ़कर बैठ गया और सारे लोग किनारे पर खड़े हैं यीशु मसीह को सुनने के लिए। और यहां पर यीशु मसीह उस सच को, उस खुफिया राज को, उस सच्चाई को बयान करने के लिए जा रहा है। आगे चलकर हम इस तमसील में चार मुख्तलिफ जमीनों को देखेंगे, उन चार मुख्तलिफ जमीनों को देखेंगे जिनके लिए एक बीज बोने वाला निकलता है, जो बीज बोता है। हम देखेंगे कि ये चार जमीनें किन लोगों को जाहिर करती हैं, और आज आपके लिए सवाल है कि आप यहां पर आए हैं, इसलिए तवज्जो करें और अपने आप को जैसे यकूब के आम खत में लिखा है कि बाइबल मुकद्दस वो आईना है जिसमें हम अपनी सूरत देख सकते हैं, अपनी हालत देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इन चार जगहों में, इन चार जमीनों में अपने आप को देखें कि आपकी हालत क्या है। सो तीसरी आयत। सो दूसरी आयत और पहली आयत से क्या मुराद है, यीशु मसीह को फकीयों, फरीसियों ने और रब्बियों ने और काहिनों ने और दूसरे लोगों ने क्या किया है, इनकार किया, नापसंद किया, यीशु मसीह को रद्द कर दिया, यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानने के बजाय उन्होंने कहा कि उसमें बदरू है इसलिए वो सब काम करता है। तो यीशु मसीह झील के किनारे जाकर कश्ती पर चढ़ जाता है और लोगों से कलाम करता है। और तीसरी आयत में उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी मिलने ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए, और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना, जिसके कान हो वो सुन ले। यीशु मसीह ने ये तमसील शुरू की, और यीशु मसीह यहां पर रोजमर्रा की जिंदगी के काम को लेता है। जैसे आप हमारे नजदीक ही लाला जी यानी के तबस्सम के अबू की और भाई भट्टो की और दूसरे लोगों की जमीन है, हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि जब वो बीज बोने के लिए निकलते हैं, تو کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح اس وقت بھی یسوع مسیح نے اس دور کے مطابق، اس رواج کے مطابق لوگوں کو ایک سچ سکھانے کے لیے روزمرہ کی زندگی کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کیا کیا، سچ سکھانے کی کیا کی ہے، کوشش کی ہے، سچ بتایا ہے. اور یسوع مسیح نے اس بات کو شروع کیا اس تمثیل سے، اس سچائی سے، اس مثال سے کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بونے کے لیے نکلتا ہے سب سے پہلے اسے زمین تیار کرنے کی ضرورت ہے، اسے اپنا تھیلا لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی اس زمین پر بیج بوئے. تو جب وہ بونے کے لیے نکلا تو پہلی چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا، بوتے وقت کچھ دانے راکھ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا. یہ پہلی قسم کی زمین ہے جو پچھلے باب کے ان لوگوں کو ظاہر کرتی ہے جنہوں نے یسوع مسیح کا انکار کیا، یسوع مسیح کو رد کیا، خوشخبری کے پیغام کو انکار کیا اور کہا کہ ہمیں خدا کے اس مسیح کی جو نجات دہندہ ہے ضرورت نہیں، ہمیں اپنے زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ دینے کی ضرورت نہیں. کیوں ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیوں ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ چوتھی باب کا چوتھی آیت کا تعلق 19ویں آیت سے بڑا گہرا ہے. میرے ساتھ 19ویں آیت دیکھیں اس باب کی. جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چرا لے جاتا ہے. یہاں پر یسوع مسیح اس شخص کی، اس زمین کی، اس انسان کی بات کر رہا ہے جو کلام کو سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں اور اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، اس لیے ابلیس شریر شیطان اسے آ کر چرا لے جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا چھٹے باب میں تو کیا کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کہنا، اور اس کی چھٹے باب کی 13ویں آیت کو آپ جانتے ہیں، سب روح آپ منہ زبانی اس بات کو جانتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. جو برائی کا وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یونانی زبان میں ہے اس شریر ابلیس سے بچا جو ہمیں آزمائش میں ڈالے گا، جو ہماری زندگی میں سے تک کلام چرانے کی کوشش کرے گا. اور اسی طرح جب یسوع مسیح اس دنیا سے جدا ہونے والا تھا، اپنے شاگردوں سے جدا ہونے والا تھا، صلیب پر قربان ہونے کو تھا، صلیب پر اپنے آپ کو دینے کو تھا اور اپنے کلام کے مطابق وہ قبر میں اتارا جائے گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور خدا کی داہیں طرف جا بیٹھے گا، تو یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 15ویں آیت میں یہ دعا کی. اور یسوع مسیح نے کیا دعا کی کہ اے باپ میں نہیں چاہتا، میں دعا کی کہ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو اسے دنیا انہیں دنیا سے اٹھا لے. یسوع مسیح یہاں پر شاگردوں کے لیے بات کر رہا ہے. یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ خدا باپ تو ان کو دنیا سے اٹھا لے بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر. آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ہمارا ایک مخالف ہے جس کا نام ابلیس ہے، جسے جھوٹ کا باپ کہا گیا ہے، جسے بائبل مقدس کہتی ہے وہ فریب دینے والا ہے، جسے بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ خوشخبری کے پیغام کو چراتا ہے تاکہ لوگ تاریکی میں، تاکہ لوگ موت کی ہلاکت میں رہیں. تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے دعا یوحنا 17ویں باب اس کی 15 آیت میں کی کہ اس شریر سے ان کو محفوظ رکھ. اسی طرح پالوس رسول بھی ہمیں افسیوں 6 باب اس کی 16ویں آیت میں کہتا ہے کہ ایمان کا بختر لگا کے تاکہ اس شریر کے جلتے ہوئے تیروں سے بچ سکیں. چوتھی آیت میں جو بونے وقت دانے راہ کے کنارے گرے، یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کا کلام سنتے تو ہیں لیکن اس کی خوشخبری کو قبول نہیں کرتے. और क्या लिखा है 19वीं आयत में दूसरे हिस्सा में, जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर चुरा ले जाता है। ये वो हैं जो राह के किनारे बोए, ये वो हैं जो राह के किनारे बोया गया था। 5वीं आयत, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए। और यहां पर हम देखते हैं 5वीं आयत के तल्लुक को, हम देखते हैं किस आयत से, 20वीं आयत से। 20वीं आयत से ये ईमानदारों को जाहिर करती हैं कि ईमानदार जिन्होंने कलाम खुशखबरी का सुना, जिन्होंने अपनी जिंदगी में उसे जगह दी। और 20वीं आयत में क्या लिखा है, जो पथरीली जमीन में बोया गया ये वो हैं जो कलाम को सुनता है और उसे फियर और फोर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म भरपा होता है। तो फील फोर ठोकर खाता है। बहुत दफा ईमानदार खुदा का कलाम खुशी से कबूल कर लेते हैं, खुशी से बड़े नारे मारते हैं, लेकिन जब मुसीबत, जब मुश्किल, जब जुल्म भरपा होता है, जब किसी तरह की मुसीबत आती है, तो वो अपने ईमान के उस लंगर को, ईमान की उस चट्टान को छोड़कर नाउम्मीदी और अपनी राह पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें यहां पर खुदावन यीशु मसीह कहता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कलाम सुनते हैं लेकिन कबूल करते हैं, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखते। और यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरा कलाम सुनता है उस पर अमल करता है। और यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझ में कायम रहो, मैं तुझ में कायम रहूंगा, तुम में कायम रहूंगा, तब ही तुम बहुत सा फल लाओगे। जब हम यीशु मसीह में अपनी जड़ कायम रखेंगे तब हम बहुत सा फल लाएंगे। और ये पथरीली जमीन ईमानदारों के और उन लोगों के दिलों को जाहिर करती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने दिल में क्या दी, खुदा के कलाम को जगह नहीं दी। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आप आज कोई पौधा लेकर आ जाएं, उसे पत्थर पर उगाने की कोशिश करें, वो उग तो जाएगा लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखेगा, जल्द ही सूरज निकलेगा और वो जल जाएगा और सूख जाएगा। और ऐसे ही बहुत से ईमानदार हैं, जब बीमारी, जब मुश्किल, जब परेशानी, जब तकलीफ, जब लड़ाई झगड़ा और किसी और तरह का अबलीसी और शैतानी और बदरूहों का हमला होता है, तो अम्बरे अंदर जड़ ना रखने के बायस वो खुदा से अपना मुंह मोड़कर आरजी मकामों की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी है। खुदा पर भी थोड़ा सा यकीन रखना, फिर जादूगिरी पर भी, खुदा पर थोड़ा सा यकीन रखना, फिर देवी देवताओं को भी मानना, खुदा पर यकीन रखना और उसके बाद फिर मुर्दा लोगों को भी पूजना। और ये है दूसरी किस्म की वो जमीन, जो इंसान जो कलाम सुनता है खुशी से कबूल कर लेता है लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता। और फिर हम 7वीं आयत को देखते हैं, और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और 7वीं आयत को हम 22वीं आयत में देख सकते हैं, और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। ये उस ईमानदार के दिल की हालत है जो झाड़ियों में दाने गिरे। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर बोने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और बोया क्या जा रहा है? खुदा का कलाम। और किस जगह पर बोया जा रहा है? ये इंसानों की जिंदगी है, इंसानों के दिलों दिल हैं। जैसे हम सुबह महबूब ने गीत गाया था, दिल दी जमी दे उत्ते हल रूदा चला दे, अपने कलाम दा तू बीज उगा दे। दिल दे बगीचे विच आ जा मेरे दिल दिया जानिया, यसु जानिया, यसु जानिया। सो बोया जाने वाला क्या है? कलाम है। और जो बोया जा रहा है किस चीज पर? हमारे दिलों पर, हमारी जिंदगियों के लिए खुदा का कलाम। और 22वीं आयत में जो ईमानदार को जाहिर किया गया है वो क्या है? जो झाड़ियों में बोया गया, वो ये है जो कलाम को सुनता है। ये ईमानदार कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दुबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी झाड़ियां हैं। किसी चीज का अगर आप बीज लें, चाहे वो चने का बीज हो, चाहे वो कोई भी फल हो, या कनक के दाने हो, या चावल का बीज हो, या नरमे का, या मकई का, जब आप उसे उस झाड़ी में फेंकेंगे वो उग तो जाएगा, लेकिन सूरज की कमी से, सूरज की कमी के बायस वो क्या है, तनावर पौधा या तनावर फल पैदा नहीं करेगा, वो मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि उस झाड़ियों में उसे रोशनी नहीं मिली, झाड़ियों में उसे अच्छी जमीन नहीं मिली, झाड़ियों में उसे अच्छी जड़ नहीं मिली, इसलिए वो बेफल रह गया, इसलिए वो सूख गया, इसलिए झाड़ियों ने उसे दुबा लिया। और यहां पर जो झाड़ियां हैं इस दुनिया को जाहिर करती है, दुनिया की ख्वाहिशों को, दुनिया की फिक्रों को, दुनिया के ऐशो आराम को। और बहुत दफा ऐसा लोगों के साथ होता है, ईमानदारों के साथ होता है। और बाइबल मुकद्दस यहां पर जब हम देखते हैं जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र, मत्ती की इंजील उसके छठे बाप उसकी 25वीं आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने शिगिर्दों को? ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, दुनिया की फिक्रों में ना रहो। आसमान के परिंदों को देखो कि वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको क्या खिलाता है, क्योंकि हमारी कदर उसकी नजर में बहुत ज्यादा है। दुनिया का लफ्ज जब भी हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं या दुनियावी देखते हैं, तो इसका तल्लक मिस्र से और बाबल से बड़ा गहरा है, क्योंकि बाबल और मिस्र बाइबल मुकद्दस में तारीकी को, बाइबल मुकद्दस में बदी के अड्डे को, बाइबल मुकद्दस में इस बात को जाहिर करता है कि उन लोगों की हालत जिन्होंने खुदा को रद्द कर दिया और बुत परस्ती और फिक्रों में और दुनिया के ऐशो इशरत और दौलत में फंस गए। और दुनिया की फिक्र उस ईमानदार को, दौलत का फिक्र क्या करता है? परेशान करता है। और वो कलाम दब जाता है, यानी कि वो कलाम क्या हो जाता है, उसका काम, उसका असर उसकी जिंदगी में रुक जाता है, इसलिए वो बेफल रह जाता है। और इसके लिए हम एक हवाला दे सकते हैं, झाड़ियों में बोया गया। मेरे साथ देखिए, दुनिया की फिक्र और दौलत और परेशानी, पहला तमोथियस छठा बाप उसकी हम चंद एक आयात देखेंगे। यहां पर 9वीं आयत में देखेंगे, खुदावन का बंदा पालूस तमोथियस को लिखते हुए कहता है 9वीं आयत में, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहता है वो ऐसी अजमाइश और फंदों और बहुत सी बहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसता है, जो आदमी को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। खुदावंद का बंदा पालूस तमोथियस को बयान करता है उन लोगों की हालत जिन्होंने दौलत को अपनी जिंदगी में اہمیت دی اور وہ ایسی ازمائشوں میں پھنس گئے، دولت کے نشے میں اتنے جھوم گئے، اتنے گل ہو گئے کہ وہ اپنا نقصان نہ پہنچان سکے، اور ان ساری گندی خواہشوں کے باعث وہ آدمی، وہ لوگ کیا ہوئے؟ تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق ہو گئے۔ کیونکہ خداوند کا بندہ پالوس دسویں آیت میں کہتا ہے، کیونکہ زر کی دوستی، جو لفظ زر کا یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یعنی کہ دولت کی دوستی، عیش و عشرت کی دوستی، ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے۔ آپ آج دیکھ سکتے ہیں بری خواہشوں کے باعث لوگ چوری چکاری کرتے ہیں، بری خواہشوں کے بعد دولت کی خواہش اور حبس کے باعث لوگ کیا کرتے ہیں؟ بینکوں میں ڈاکے مار رہے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور بڑے دوسرے خواہشوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ دولت کی خواہش۔ دولت کے پیچھے ہر ایک بشر بھاگ رہا ہے، اور خداوند کا بندہ پولوس کہتا ہے کہ ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے، جس کی آرزو میں، دولت کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دل کو طرح طرح کے غم سے چھلی کر لیا۔ آپ اپنے ارد گرد، آپ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے دولت سے محبت زیادہ پسند کی، ایمانداروں نے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول تو کیا لیکن دولت کو زیادہ اہمیت دی، دولت کو اپنی زندگی کے، اپنے دل کے تخت پر بٹھایا، اور ایمان سے گمراہ ہو گئے، ایمان کو چھوڑ دیا، اور طرح طرح کے غموں سے اپنے آپ کو چھلی کر لیا۔ کیونکہ یاد رکھیں، ساتویں آیت میں خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لے آئے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، اس لیے یہ وہ تیسری زمین ہے جو جھاڑیوں میں بویا گیا کلام ہے، وہ سنتا ہے، دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور چوتھی زمین، آٹھویں آیت کو دیکھیں، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا، جس کے کان ہو وہ سن لے۔ یہ چوتھی قسم کی زمین اس ایماندار کو ظاہر کرتی ہے، وہ جو کیا کرتا ہے، جس کا دل تیار ہے، جس کا کلام خدا کے کلام کو، جس کا دل خدا کے کلام کو کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اور اسے ہم دیکھتے ہیں 23 آیت میں، یہ چوتھی قسم کی زمین جو ایماندار کی دل کی حالت کو اور تیاری کو ظاہر کرتی ہے۔ 23 آیت، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا، غور کریں، سمجھتا اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ یہاں پر آج ہم نے 4 قسم کی زمینوں کو دیکھا ہے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو خوشخبری کے کلام کو نہیں سنتے، جو خوشخبری کے پیغام پر اپنا کان نہیں دھرتے، جیسے نوح کے دور میں ہوا۔ نوح اس بات کی منادی کرتا رہا کہ طوفان آنے والا ہے، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اس نے کشتی بنائی لیکن سب لوگ کیا کیا، انہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن نوح کا خاندان ہی بچ گیا۔ اور کیا ہوا، جتنوں نے اسے قبول کیا وہ بچ گئے، جتنوں نے نہیں قبول کیا وہ اس نوح کے طوفان میں غرق ہو گئے۔ اور یہاں پر پہلی زمین اس بات کو ظاہر کرتی ہے، جو یسوع مسیح کا کلام نہیں سنے گا، جو راہ کے کنارے گرا ہے، جو اس کے کلام کو اپنی زندگی میں، اس کے خوشخبری کے پیغام کو، اس کا پیغام کیا ہے کہ خدا انسان بنا اور زمین پر آیا، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, फिर शरीर उसे नहीं चुराएगा। आज आपको अपने आप को देखने की जरूरत है कि आप कौन सी जमीन हैं। उम्मीद है कि आप पहली वो राह का किनारा नहीं हैं। अगर आप आज राह का किनारा है तो आपके लिए सादा सी दावत है यीशु मसीह को। यहाँ पर जहां पर भी आप बैठे हैं, आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बेटी हैं, बेटा है, बड़े हैं, आप उसे कबूल कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यीशु मैं तुझ पर यकीन करता हूँ, तुझ पर यकीन करती हूँ कि तू मेरे गुनाहों के लिए मुआ। तो आप उसके फर्जंद होंगे, आप उस शरीर अबलीस से बच जाएंगे, वो आपको चुरा नहीं लेगा, वो आपको तबाह हो बर्बाद नहीं करेगा। तो पहली जमीन ये, दूसरी पथरीली जमीन वो ईमानदार जो कलाम सुनता है लेकिन अपनी जिंदगी में गहरा रिश्ता नहीं रखता, खुदा के साथ उसका तल्लक नहीं है, वह कलाम को नहीं पढ़ता, वो अपनी जिंदगी में उसे अहमियत नहीं देता। तो वो क्या है, वो अपने अंदर जड़ नहीं रखता, और जब मुसीबत और परेशानी और जुल्म और किसी तरह की दूसरी आफत उस पर आती है तो वो खुदा से भागकर आरजी मकामों पर, जैसा आप जानते हैं बहुत दफा कोई बहन या कोई भाई जिसका कारोबार खराब हो जाए, बहुत दफा मसीही ईमानदार होते हुए एक दूसरे को सलाह देते हैं, फलां के पास चले जाओ, वो आपसे बकरा लेगा, वो आपसे चावल लेगा, वो आपसे कनक लेगा, वो आपसे ये लेगा, और आपकी मुश्किल, आपकी मुसीबत, आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। ऐसी सलाह देना बड़ी ही शर्म की बात है, क्योंकि हम मसीही ईमानदार खुदा, उस जिंदा खुदा को जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो बहरों को कान देता है, जो गूंगों को बोलने की कुव्वत देता है, उसकी परस्तिश करने वाले हैं। अगर आज आप ऐसी हालत में हैं तो आज अपनी जिंदगी में खुदा से बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि खुदावन मेरी जिंदगी को बदल। हां मैं इस दूसरी वो पथरीली जमीन की मानद हूं जो तेरा कलाम सुनता तो हूं लेकिन अपनी जिंदगी में जगह नहीं देता। आप इस गीत को गा सकते हैं कि खुदावन मैंने भेष बदला हुआ है लेकिन मेरा दिल नहीं बदला, इसलिए मेरे दिल को बदल ताकि मैं तेरी मानद बनूं, ताकि मैं खुशी से तेरे कलाम को कबूल करके उससे बहुत सा फल लाऊं। और तीसरी किस्म की जमीन झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। हो सकता है आज यहां पर आप ऐसे ईमानदार हों जो कलाम को सुनते हैं लेकिन दुनिया की फिक्रों ने आपको दबाया हुआ है। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें यतीम और तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आसमान के परिंदों को देखो, ना उनके गल्ले हैं, ना उनका जमीन है, ना उनके बड़े बड़े गोदाम हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा आसमानी बाप चिड़ियों को कौओं को खिलाता हूं, लेकिन तुम्हारी कदर उन चिड़ियों से कहीं ज्यादा है, तुम क्यों फिक्रमंद हो। अपनी फिक्रों को पत्रस रसूल कहता है खुदावन को देने की जरूरत है क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करता है। खुदा को आपकी फिक्र थी इसीलिए वो जमीन पर आया और इंसान बना और आपकी फिक्रों को, आपकी परेशानियों को, आपके उस सारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। अगर आज आप दुनिया में इतने मगन हैं कि आपके पास खुदा के लिए वक्त नहीं या किसी को जानते हैं तो आप उसे बता सकते हैं कि मेरे बहन मेरी भाई, ये दुनिया आरजी है, इस दौलत को जो आरजी है, इस दौलत के फरेब को जो दूर से तो चमकती है लेकिन नजदीकी में उसकी कोई भी खुशी नहीं। इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप अगर दौलतमंद हैं तो आप दुनिया में मगन हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया की दौलत को हासिल करना चाह रहे हैं अपनी कुव्वत से, तो खुदा का कलाम बड़े वाज़िया तौर पर कहता है पहले तुम मेरी बादशाही और मेरी तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें मैं तुमको अनाम में दूंगा। हो सकता है आज आप झाड़ियों वाली जमीन हो और आप बेफल हैं। इसलिए अपनी दिल की हालत का जायजा लेने की जरूरत है। हो सकता है आपका बहन, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका चाची चाचा, आपका गवांडी ऐसी हालत में है। उस तक ये कलाम पहुंचाने की जरूरत है, उसकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है, उसे वादे खुदा के याद दिलाने की जरूरत है कि एलिया नबी जब भूखा था तो कौवे उसके लिए खाना लेकर आते थे, एलिया जब भूखा था तो उसने उस बेवा की कुप्पी में इतनी बरकत डाली कि उसके बाद कभी तेल उसमें से खत्म नहीं हुआ और उस बेवा के मटके में से कभी आटा नहीं खत्म हुआ। उसे याद दिला सकते हैं कि बियाबान ने खुदा ने हजारों लाखों लोगों को आसमान पर से मन बरसाकर उनको बटेरों से रचाया, उनको आसमानी फरिश्तों की खुराक खिलाई। आप उस बहन को, उस भाई को, उस रिश्तेदार को, अपने आप को याद दिला सकते हैं कि यीशु मसीह ने उस छोटे बच्चे की उस दो मछलियों को और पांच रोटियों को बरकत इतनी दी कि 30 से 40 हजार ज्यादा लोगों को रजा दिया। फिर आज आप क्यों इस फिक्र में हैं? आपका अमान कहां पर है? हो सकता है आप इस बारे में फिक्रमंद हो कि क्या खाएंगे। याद रखें, जिस खालक ने आपको पैदा किया है वो आपकी फिक्र आपसे ज्यादा करता है। और चौथी किस्म की जमीन, हो सकते हैं आप ऐसे ईमानदार हैं जो कलाम सुनते हैं और समझते हैं और फल भी लाते हैं। और ये यसुमसी तमसील उनको सिखा रहा है कि जिस तरह जब कनक बोई जाती है, जब कोई मिसाल के तौर पर आप लाला जी से बात कर सकते हैं, बाबा सदीक जी से बात कर सकते हैं, आपके बहुत से बहन भाई, आपके घर के लोग, बहुत से जिम्मेदारा में क्या करते हैं, तजर्बा रखते हैं। जब बीज बोया जाता है तो हर छल्ली के दाने एक जैसे नहीं, किसी पर ज्यादा किसी पर थोड़े, हर एक सिट्टे में एक जैसे ही दाने नहीं होते, हर झोने के उस झोने में या कनक में या मकई में एक जैसा ही एक जैसा नहीं बल्कि कम और ज्यादा फल आता है। इसी तरह यीशु मसीह कहता है जो अच्छी जमीन में बोया गया वो जो कलाम सुनता है, समझता है और फल भी लाता है 100 गुना 60 गुना 30 गुना। आज सवाल आपसे है कि आप इन चार जमीनों में से कौन सी जमीन है? और 10वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, शिगिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बात करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है मगर उनको नहीं दी गई। जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनके हक में यसाया नबी की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। यहां पर यीशु मसीह उस पहली जमीन के बारे में, उस किनारे के बारे में बात कर रहा है कि वो ना सुनेंगे, ना समझेंगे, ना देखेंगे, ना कबूल करेंगे। ये उन लोगों की हालत है जिन्होंने अपनी जिंदगी में यीशु को इनकार किया है। उम्मीद है यहां पर कोई भी यीशु मसीह के बगैर नहीं। अगर आपने पहले यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो आज आप ये फैसला कर सकते हैं। इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप मसीही खानदान में पैदा हुए हैं इसलिए मसीही हैं। याद रखें इस गहरे सच को कि मसीही पैदा नहीं होते बल्कि जब कोई मसीह पर ईमान रखता है तब वो मसीही बनता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस पदेश से लेकर मुकाशफा तक इस बात का ऐलान करती है, इस बात की वजाहत करती है। इसलिए अगर आप यहाँ पर अगर कोई बहन कोई बच्चा जिसने यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल नहीं किया तो सादा सी बात कहने की जरूरत है। आप मुझसे, भाई ताहर से, भाई रजेश से, भाई क्रिस से बात कर सकते हैं कि मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सोचा, तो हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। सादा सी बात कहने की जरूरत है कि खुदावंद मैं तेरे बेटे, खुदावंद मैं तेरे कफारे पर ईमान लाता हूँ और मैं मानती हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ और हमेशा की दोजख से तू मुझे रहाई दे सकता है। तो आज सवाल ये है, अपने साथ लेकर जाएं इन चार जमीनों में से आप किस जमीन से क्या करते हैं, तलक रखते हैं, आए हम खुदा के हुजूर झुकें। खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, और खुदा बाप तूने अपने कलाम को बड़े वाज़ह तौर पर बयान किया है, और खुदावंद तेरा पाक रू यहाँ पर मौजूद है हम सब के दरमियान। अगर यहाँ पर कोई बहन, कोई भाई, कोई बच्चा जिसने पहले तुझे कबूल नहीं किया, तो खुदावंद हम यीशु मसीह के नाम में उससे इल्तमास करते हैं, उससे दावत देते हैं कि वो तेरे साथ सुलह कर ले। और तूने इस बात को कहा कि जो कोई मेरे बेटे पर ईमान लाएगा और अपने मुंह से इकरार करेगा कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया और दिल से ईमान लाएगा, वो हमेशा की जिंदगी का वारस है। सो खुदा बाप, अगर किसी ने ये फैसला किया है, अगर कोई बातचीत करना चाहता है, तो खुदावंद पाकरू तू उनकी रहनुमाई कर और आज के कलाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।